जय माँ। आज का विषय बहुत ही रोचक है। वास्तव में वो एक घंटे का तो विषय नहीं है, बहुत लंबा विषय है, पूरी एक वर्कशॉप का विषय है। क्योंकि इसमें जो इसका जो शीर्षक है मानव या मानवता, कल आज और कल, अगर हम केवल इसको ही डिफाइन करें, उसको ही समझें, तो बहुत समय निकल जाएगा। जैसे मानवता, अब मानवता के बारे में सबकी अलग अलग सोच है। अगर वैज्ञानिक से पूछेंगे तो वो तो केवल वो कहेगा कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल, बाइपीडल, जो दो पांव पे चलता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक दृष्टि में देखते हैं तो मनुष्य इज़ ए डिसेंट। ये बहुत ही अजीब बात है कि विज्ञान में ये शब्द यूज़ हुआ है, डिसेंट ऑफ मैन। तो जब मैंने पढ़ा था पहली बार, ये बड़ी फेमस पुस्तक भी है, कि ये डिसेंट इन्होंने क्यों लिखा है, क्योंकि होना चाहिए एसेंट, लेकिन एक्चुअली मनुष्य एक डिसेंट है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। और शेरविंद इसको बताते हैं कि जो मनुष्य का एग्जिस्टेंस या अस्तित्व है वो उच्चतम लोकों में है। इनफैक्ट माँ एक जगह बताती हैं कि जहाँ उन्होंने प्रोटोटाइप ह्यूमन फॉर्म को देखा, जो शेरविंद रिकॉर्ड्स ऑफ योगा में बहुत विस्तार में बताते हैं, वो ओवर माइंड के प्लेन पर है। और वहाँ से वो धीरे धीरे, बहुत सारी हमारी कहानियाँ हैं, फॉर एग्जाम्पल विष्णु पुराण में आप पढ़ेंगे तो अगर ये कंटेक्स्ट ना हो तो आश्चर्य होता है कि कहानी कहाँ की हो रही है, ये धरती पर मनुष्य की हो रही है या मनुष्य की किसी और लोक में हो रही है। तो एक उच्च लोक से मानव चेतना ही नहीं, मानव एक्चुअली फॉर्म है, ह्यूमन फॉर्म, और वो विकास के द्वारा जब पशु एक लेवल पर पहुंच जाता है तब वो मानव चेतना और मानव फॉर्म जो उच्च लोकों में ऑलरेडी व्याप्त है वो धीरे धीरे इसके अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो मानव जन्म वास्तव में केवल एक नॉर्मल एसेंट की चीज नहीं है, उसके अंदर एक डिसेंट है। और इसी कारण अगर हम ध्यान से देखें और अपने जीवन को देखें तो मनुष्य के अंदर हमेशा कोई चीज है जो बड़ी स्ट्रेंज सी है। वो कभी भी पूरी तरह धरती को के साथ उसको एक जुड़ाव है, लेकिन वो एक स्ट्रेंजनेस का आभास होता है जो बढ़ जाता है जब हम जैसे जैसे आंतरिक प्रगति करते हैं, मानो हम यहाँ के हैं भी और नहीं भी, और कोई ना कोई खोज रहती है जो इस पृथ्वी के परे कोई है, कोई सत्य है, क्योंकि हम लोग वहाँ से आए हैं। तो पहले तो हम मनुष्य की एक परिभाषा है जो आधुनिक विज्ञान देता है, जो हम आमतौर पर समझते हैं, दो पांव वाला जीव जिसकी पूंछ नहीं है, लेकिन मनुष्य की एक समझ है, परिभाषा है, जो हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में है, बड़ी सुंदर है। मनु, मनु से मनुष्य, और मनु जो थिंकिंग, जो वो जो मन से जन्म लेता है, वो जो एक प्रकार से बीइंग है जो इस सारी सृष्टि को का संचालन करता है, मनोमय जगत का, मनोमय जगत का जो उच्चतम अस्तित्व है वो मनु और उसकी संतानें। तो अगर उस दृष्टि से देखते हैं तो पूरी हमारी दृष्टि बदल जाती है, क्योंकि मनुष्य के अंदर एक स्वाभाविक वृत्ति होती है सेंड करने की, उन प्लेन्स को खोजने की, क्योंकि वो वहाँ से आया है, लॉस्ट एक तरह से। इसका बहुत बड़ा विस्तृत वर्णन है, श्री अरविंद सावित्री में बताते हैं कि मनुष्य के अंदर ये खोज है, क्योंकि वो केवल एक धरती से जुड़ा हुआ जीव नहीं है, उसको कई शास्त्रों में हमारे डबल बर्थ भी कहा गया, मैन इज ए डबल बर्थ, और फिर उसके अंदर चैत्य सत्ता। तो हर दृष्टि से मनुष्य एक बहुत ही अद्भुत क्रिएशन है, अंतिम नहीं है लेकिन वो बाद में, लेकिन अद्भुत क्रिएशन है जो एक तरह से धरती और आकाश को जोड़ने का काम करती है, ये मनुष्य है आध्यात्मिक दृष्टि से। फिर जब हम कहते हैं कल आज और कल, तो यहाँ हमारी सीमा का आभास होता है। अक्सर ये सुनने में आता है, बहुत से लोग बोलते भी हैं कि हमारा समय बहुत अच्छा था और हमारा ज़माना बहुत अच्छा था, सबको अपना ज़माना अच्छा लगता है, आज ये खराब है वो खराब है। तो कई बार मैं पूछता भी हूँ कि आपका ज़माना, कौन से ज़माने की आप बात कर रहे हैं और कितने दिन पूर्व की बात कर रहे हैं। तो अगर हम कल की बात करते हैं तो उसको भी हम एक छोटे परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं और उसको एक बहुत विशाल परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। कुछ एक कहानियाँ ले लेते हैं हम लोग, जो एक दृष्टि हमारी बदल। अक्सर हम लोग कहते हैं अरे कलयुग में सब खराब हो गया, बहुत ही ऐसा है वैसा है, ठीक है एक अपनी जगह उसका औचित्य है, लेकिन अगर मैं केवल एक केवल दृष्टि बिंदु थोड़ा सा बदल के देखें तो द्वापर में वही सब हैं, स्वयं भगवान पृथ्वी पर आए हुए, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये सब हैं, भीष्म जैसे आज ढूंढने से नहीं मिलेंगे इस तरह के लोग। लेकिन उसी द्वापर में, राजसभा में, द्रौपदी को जुए में हार करके वस्त्र हरण हो रहा है। ये भी एक सच है जो डॉक्यूमेंटेड सच है। और अगर आज ये हो, ऐसा नहीं कि आज नहीं होता है, लेकिन आज अगर ये चीज होती है तो उसको पूरी, ना केवल, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ जुडिशरी सिस्टम कितना अच्छा है या बुरा है, लेकिन एक मनुष्य के अंदर एक भाव आ गया है कि ये गलत है। अब वो उसमें क्या कर पाएगा नहीं कर पाएगा एक अलग बात है, यानी हम जो पाप वृत्ति है उसको अब हम छिपा करके, वो कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर छिप गई है, उसको सामूहिक रूप से ओपनली नहीं करता है कम से कम। तो अब ये सोचने का विषय है कि ये बेटर है या वो बेटर था, या प्रगति हुई है कि नहीं हुई है। खासकर अगर हम थोड़ा सा नज़र दृष्टि डालें कि यदि कुरु सभा की बात कर रहा हूँ, कि यदि कुरु सभा में जो एम्प्रेस है, मतलब वो एक्चुअली तो इंद्रप्रस्थ मिल गया है इनको, एम्प्रेस है जो जो राज घराने को बिलोंग करती है, राजकुमारी है, याज्ञ सैनी है, अग्नि से जन्मी है, उस द्रौपदी के साथ अगर भरी सभा में भीष्म इत्यादि के रहते हुए जो कृत्य हो रहा था वो हो सकता है, तो एक साधारण नारी का जीवन कैसा होगा? अब इसमें आपको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, साधारण नारी का जीवन कैसा रहा होगा? और वो हम देखते भी हैं, महाभारत के अंत में ये कहानी आती, बड़ी दारुण कथा है, मैंने जब पढ़ी थी तो मेरा तो अंतर तक हिल गया था। और भागवत में, पुराण में तो शुरू शुरू में आती है कि खबर आती है द्वारका से, श्री कृष्ण चले गए हैं, तो अर्जुन जाते हैं, दुख में व्याकुल हैं, और वहाँ देखते हैं कि जो रानियाँ हैं उन सबको जो दस्यु हैं वो उठा के लेके जा रहे हैं। आप सोचिए, दे आर नॉट कॉमनर्स, रानियाँ हैं, और दस्यु जब ले जा रहे हैं तो अर्जुन को जब ये पता चलता है तो वो जाते हैं उनके पीछे, लेकिन वो गांडीव नहीं उठा पा रहे। और उसके बाद वो जब गांडीव को उठा के प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो वो गांडीव को लेके भागते हैं और एक लाठी की तरह इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन वो नेचुरली दस्यु हैव द बेटर ऑफ हिम, और क्योंकि उनकी आयु भी थी, बाय द टाइम ही जब श्री कृष्ण जाते हैं उस समय अर्जुन की उम्र इन सब की 105 106 ये उम्र है। फिर वो प्रयास करते हैं और अंत में वो सब ले जाते हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अंदर तक दुख हो जाएगा कि ये हमने तो एक बहुत आदर्श युग की कल्पना की है। यानी कहने का अर्थ ये कि ये जो आइडिया होता है कि जो पास्ट था हमेशा अच्छा था, ये भाव हमको कोर्स करेक्शन करना चाहिए हमारी स्क्रिप्चर्स को, अगर हम पढ़ें डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री को पढ़ें। और अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि में चले जाएं कि जो पास्ट डॉक्यूमेंटेड है तो बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। अगर हम आज के मनुष्य को देखें, वो तो 3 मिलियन एक एवरेज, 6 मिलियन के करीब होगा जब पहली बार एक अंश मनुष्य का प्रकट हुआ, पर 2 to 3 million ईयर्स अगर हम केवल उसको देख लें, यानी 20 से 30 लाख वर्ष एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, मैं इसके टाइमलाइन में नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि उसमें अपने एक अलग विषय है। तो अगर हम इतना देखें तो मनुष्य 9 मनुष्य की सब स्पेसीज आई हैं, जो बड़े इंटरेस्टिंग नाम है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, क्रोमैग्नॉन, आपस में झगड़ा करते थे, मनुष्य सीधा ऐसे नहीं हुआ जिसको आज हम कहते हैं होमो इरेक्टस सेपियंस, होमो सेपियंस इरेक्टस, ये अंत में आया है। बहुत सारी सब स्पेसीज आई जिसके बाद जो गायब हो गई संसार से और उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा। और ये जानकारी आवश्यक है क्योंकि ये हमको भविष्य की ओर भी एक संकेत देती है। उसके बाद मनुष्य आता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि शेरविंद अपने रिकॉर्ड्स ऑफ योगा में मनुष्य के पहले आने वाली 9 भिन्न मानव या मानव के पहले की पूर्व की प्रजातियां इनका वर्णन करते हैं। और जब हम इनको पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह वो लिखते हैं पशु, अब वो पशु मानव यानी मनुष्य है लेकिन वो पशु के ही जैसा है। फिर अगर हम आगे बढ़े तो आता है वानर, और वानर कहते हैं शेरविंद की वानर पशु नहीं है, वो मानव प्रोटोटाइप ह्यूमन है। उसके बाद हम देखते हैं पिशाच, फिर प्रमथ, फिर राक्षस, फिर असुर, फिर देव। अब इनके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि यही अपने आप में फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। मुझे तो बहुत आनंद आया था जब मैंने पढ़ा था, ये एकदम साइंटिफिक उससे कोरिलेट भी करता है। लेकिन ये सारी अलग अलग प्रकार की धरती पर प्रजातियां उत्पन्न हुई हैं जो चली गई हैं। ऑफकोर्स राक्षस वो सिंह वाले ये सब, इट्स ए फिगरेटिव वे ऑफ शोइंग कि जो पशु के काफ़ी करीब थे, लेकिन ये सब चली गई हैं। अब जो बचा है वो ये मनुष्य है। तो इससे एक चीज़ बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि हम कितना भी कैसे भी समझ ले, लेकिन कोई शक्ति है इस धरती के अंदर जो विकास को ले जा रही है अनवरत गति से। फिर आता है कि प्रलय का क्या, प्रलय भी उसी का एक पार्ट है। एक अब हम लोग तो ये मानते हैं कि प्रलय पहले भी हो चुकी है। अगर हम श्री अरविंद सीमा की वाणी को देखें और हमारे पुराणों को पढ़ें और वैज्ञानिक एविडेंस देखें, तीनों एक ही चीज का संकेत करते हैं। तो अगर हम अपने पुराणों को देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि 6 बार प्रलय हो गई, यानी हर एक मनु का एक नया मनु आता है। तो इस बार श्रद्धा देव मनु है जो 7th क्रिएशन है। अगर माँ बताती हैं ऑकल्ट सीक्रेट्स तो वो कहती हैं कि 6 बार प्रलय हो गई है और ये जो 7th क्रिएशन है इसके बाद केवल एक अविरल विकास की धारा बहने वाली है, अविरल विकास है। उसके बाद उसमें हम लोग थोड़ी देर बाद जाएंगे। अगर हम वैज्ञानिक एविडेंस देखें तो वैज्ञानिक एविडेंस इसका ये है कि लगभग 6 बार 5 बार निश्चित रूप से आइस एज पृथ्वी के ऊपर आ चुकी है। और अंतिम आइस एज जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगती है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भाई ये अपने आप एक्सीडेंटल है, धरती एक्सीडेंट हो गया उसके बाद अपने आप विकास होता है, तो शुरू का तो समझ आता है एक्सीडेंट हो गया, जीव आ गया किसी भी तरह, एक सेल की ऑर्गेनिज्म आ गई। मेडिकल ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इसको मानती है कि आज से कई कुछ मे बी मिलियन ईयर्स या ऐसे उसके पहले एक समय आया था, टाइमलाइन में भूल रहा हूँ, जब धरती के ऊपर आइसलैंड में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था और उसके धुएं ने सूरज को करीब 6-7 दिन तक ढक लिया था और इतना घनघोर रूप से आच्छादित कर दिया था कि सूर्य की ऊष्मा आती नहीं थी। वैसे इससे मैंने एक अलग साइड ट्रुथ भी निकाला है, पर उसमें मैं अभी थोड़ा बाद में जाऊँगा, उसको होल्ड बैक कर रहा हूँ। सूर्य 6 दिन पूरी तरह आच्छादित हो गया था नॉर्मल मेघ से नहीं, जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था आइसलैंड में उसके स्मोक से, और धरती पर मनुष्यों की संख्या घटकर अनुमान के परे केवल 1500-1600 मनुष्य बचे थे। वो भी कौन से मनुष्य जो कहीं पहाड़ों पर चले गए थे, ये डॉक्यूमेंटेड है, वैज्ञानिक डॉक्यूमेंट वो कह रहा हूं। ये 1500 मनुष्य बचे थे, इसके बाद तो इनको समाप्ति हो जाना चाहिए था। लेकिन देखिए विकास की धारा कैसे बही है। डायनासोर जब खत्म हुए धरती के ऊपर लगभग जनजीवन समाप्त हो गया था। केवल डायनासोर नहीं मरे थे, हम लोग कल्पना में सोचते केवल डायनासोर, इतना सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की थी नेचर ने, धरती खत्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो जीवन आता है वो इतना प्रस्फुटित होता है, कितनी नई वेराइटी ऑफ स्पेसीज आती हैं उसके होने के बाद, उस घटनाक्रम के बाद। बीच में चूंकि वो मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा टॉपिक से हटके, 6 दिन सूर्य की रोशनी के कटने से यदि पूरी मनुष्य जाति लगभग समाप्त हो गई थी। एक क्षण को अपने जीवन पर देखें जो आजकल एयर कंडीशन के अंदर रहता है, एयर कंडीशन कार में घूमता है, और सूर्य की रोशनी की घोर कमी। आज हम विटामिन डी की बात कर रहे हैं, हम लोगों का सेल्फ क्रिएटेड एक्सटिंक्शन है। सूर्य की ऊर्जा हम नहीं लेते, ये हमारा ओरिजिनल सोर्स है सारे जीवन का। पर ये एक अलग विषय है कि कभी और अगर वार्ता होगी तो इस पर हम लोग कर सकते हैं कि सूर्य की ऊर्जा कितनी आवश्यक है मनुष्य के जीवन के लिए। और आज के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि डेली अगर आप 35 से 40 मिनट सूर्य की ऊर्जा में केवल वॉकिंग करते हैं तो आपके बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। ये मेडिकली प्रूवन डॉक्यूमेंटेड फैक्ट की बात कर रहा हूं। तो खैर ये एक साइड इशू था। कहने का अर्थ ये कि जीवन इतनी बार नष्ट होकर के फिर ये बाउंस बैक करता है। तो ये इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है ये केवल एक अघटन घटन पति ऐसी नहीं है कि समाव हो रही है। कोई चीज है, कोई शक्ति है, कोई प्रज्ञा है जो अंदर से एक ड्राइवर की तरह पुश करती है। ये बैकग्राउंड आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है क्योंकि अक्सर जब लोग फ्यूचर की ओर कमेंट करते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, लगभग सारे नेगेटिव खत्म हो जाएगा खत्म हो जाएगा। कई बार वो पहले 2020 में ख़त्म होने वाली थी पृथ्वी, उसके पहले 2000 में, ये तो प्रेडिक्शंस हम लोगों ने सबने देखी है। तो जब मुझसे कोई पूछते थे, मैं कहता था देखो अगर ख़त्म भी हो जाएगी तो उसके पार हमको देखना है कि एक नए ढंग से आएगी, क्योंकि यही इतिहास रहा है, सृष्टि का इतिहास ये रहा है। हर बार जैसे एक इंडिविजुअल जब मृत्यु के द्वार से गुजरकर एक नया जीवन लेकर आता है तो एक कदम आगे जाता है, ये श्री अरविंद बताते हैं। अगर हम तंत्र वाली एक बड़ी कंजर्वेटिव मिलेगी 84 लाख योनी, मैं अगेन उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो एक अलग अंडरस्टैंडिंग है, तो भी उस 84 लाख चौखटों से पार करके अंत में मनुष्य बनता है। तो इस सृष्टि के अंदर एक ड्राइविंग मैकेनिज्म है जो अपना प्रयोजन पूरा करके ही वो जाएगी ही जाएगी, आप उसको कितना भी कुछ कर लो। और अगर वास्तव में एक लाइन है सावित्री में, अगर वास्तव में इस संसार के पीछे, इस सृष्टि के पीछे एक दैवी शक्ति है, एक ईश्वरीय हाथ है, तो फिर सावित्री की जो लाइन है, हाउ कैन द एंड बी वेन व्हेन गॉड इज गाइड। तो ये अगर हम समझ के चलें कि ये अचानक अपने आप होने वाली घटना नहीं है, तो जो लोग भी फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं उनसे कई बार मैं पूछता भी हूं कि आपके अंदर क्या श्रद्धा नहीं है ईश्वर में, यू हैव अ राइट टू से नहीं श्रद्धा है, फिर क्या है, सब कुछ कोलैप्स हो जाता है। भविष्य तो छोड़ो, आपका वर्तमान कोलैप्स हो गया, क्योंकि यदि हमारे अंदर ईश्वर नहीं है, हम केवल हाड़ मांस के पुतले हैं जैसा हम सुनते आए हैं, तो वास्तव में हमारा क्या रहने का भी क्या औचित्य है, रहा या ना रहा हाड़ मांस का पुतला, इट इज ऑल द सेम। तो एक ग्रेटर शक्ति है, दिव्य शक्ति है जो इवोल्यूशन की ड्राइवर है, ये हमारे शास्त्रों में भी है, श्री अरविंद हमको ये बताते हैं, और वहाँ से एक बहुत अद्भुत आशा जन्म लेती है, होप स्प्रिंग करता है। क्यों, सावित्री की पंक्तियाँ हैं, हाउ कैन दी एंड बी वेन व्हेन गॉड इज गाइड, कि अगर ईश्वर ले जा रहे हैं तो उनकी कोई प्रयोजन है, मृत्यु अंत नहीं है, इसके परे जीवन है, प्रलय अंत नहीं है, प्रलय के परे जीवन है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये तो हमारा पास्ट हुआ। तो ये जब हम लोग बात करते हैं, अरे पहले बड़ा अच्छा था, ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम क्या बातें कर रहे हैं। और अगर हम बोलेंगे कि हमारे समय में, अब इसकी भी थोड़ी चर्चा हो जाए, क्योंकि कल की जब बात आती है हम कहते हैं हमारे जो बच्चे थे बड़ा हमारा आदर करते थे, तो मेरा तो ये प्रश्न होता था कि भाई बच्चे तो आदर करते थे, हम आदरणीय थे कि नहीं, ये आवश्यक प्रश्न है। और मैं तो रह चुका हूँ, गांव में बड़ा हुआ हूँ, मैंने देखा है जीवन कि वास्तव में हम लोग, हमसे अब मेरा मतलब है वो जनरेशन, आदर के योग्य थी कि नहीं। अब वो क्या है उसमें मैं टच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक ततैया का छत्ता है जिसको अगर आप छुएंगे तो ना जाने क्या क्या निकलेगा। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गाली भी, ख्याल अच्छा है कि बहुत अच्छा था हमारे समय के लोग, हमारे समय के लोग। तो मैं पूछता हूँ कई बार, हमारे समय के लोग ब्राइड वर्निंग भी होती थी, अब मैं 100-200 साल की बात कर रहा हूँ, और यही नहीं होती थी, सब जगह होती थी। अमेरिका की बात कर लो, वोटिंग राइट्स नहीं थे लड़कियों को 1945 तक या 50 तक। तो ये कौन से समय की बात कर रहे हैं कि हमारे समय के लोग बहुत अच्छे थे, लड़कियां पढ़ाई नहीं कर सकती थी, ये 150 साल पहले भी नहीं, 100 साल पहले की बात है। और मैं भारत की नहीं बात कर रहा हूँ, आयरलैंड की बात कर रहा हूँ। तो इसको हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, क्योंकि जो वयोवृद्ध थे उनको पांव छू करके आशीर्वाद लिया जाता था, दैट ऑल्सो वॉज वेरी वेरी लिमिटेड इन सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये कोई यूनिवर्सल चीज नहीं थी जो हो रही थी। खैर वो एक अलग बात है। कहने का अर्थ ये कि पास्ट को भी जब हम मूल्यांकन करते हैं तो थोड़ा हमको सच में फैक्ट्स पर दृष्टि डालनी चाहिए, केवल हमें अच्छा लगता है ये काफ़ी नहीं है। क्योंकि यदि हम इस तरह से पीछे घूम के देखते रहेंगे तो हम भविष्य को खटाई में डाल रहे हैं। और इसकी ये हमारी यही कहानी है। कहानी कौन सी है, जब दक्ष प्रजापति का यज्ञ होता है और शिव जी इन्वाइटेड नहीं है, और वो सब कहानी हम जानते हैं। तो बहुत संक्षेप में, अंत में जब दक्ष प्रजापति का सिर कट जाता है और सब रोना धोना हो रहा है, चीख चिल्लाहट हो रही है, तो वहाँ पे शिव जी अपनी अनुकंपा से कहते हैं कोई भी सिर ले आओ, बकरे का सिर लगा दिया जाता है। और डिवाइन सर्जन से भूल हो जाती है, अब भूल तो नहीं है वो सिर पीछे की तरफ, मतलब देह आग सामने की तरफ है, सिर पीछे की तरफ है। तो जब दक्ष प्रजापति को लगता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं तो वास्तव में वो पीछे जा रहे हैं, और जब उनको लगता है कि वो वास्तव में पीछे जा रहे हैं तो एक्चुअली वो आगे बढ़ रहे हैं। ये इतनी अद्भुत कहानी है, इसको श्री अरविंद ने बहुत सुंदर ढंग से वंदे मातरम में द पैराबल ऑफ महादेव एंड सती, हालांकि उन्होंने पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में इसको कहा है जो आज भी रेलेवेंट है, अगर हम केवल पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं तो बड़ी रेलेवेंट है। लेकिन मूल बात यह कि जो पास्ट हमारा बहुत अच्छा था, हमको पहले तो उसका सही मूल्यांकन करना चाहिए और उसको बिल्कुल बिना दृष्टि से कुछ छिपाए हुए देखना चाहिए, और अगर अच्छा था भी अगर तो भी मनुष्य की गति आगे की ओर जाना है। अब हम उस समय पे नहीं जा सकते हैं, और यदि हम ये प्रयास करते हैं तो हमारी अवस्था उस दक्ष प्रजापति की तरह है जो सिर पीछे है, उसको लग रहा है वो आगे जा रहा है लेकिन वास्तव में पीछे जा रहा है। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज के समय में भी बहुत कुछ एक गुरु भी हैं, नाम नहीं लूँगा, अच्छे हैं, अच्छे खासे लोग हैं, पता नहीं लेकिन क्यों इन विषयों पे बात करते करते अचानक बच्चे आज के खराब हो गए हैं, पहले के बहुत अच्छे थे। अब आज के बच्चों में क्या खराबी है? सबसे ज़्यादा कि वो थोड़े ज़्यादा फ्रैंक हो गए हैं, वो कह देते हैं कि डैड आप गलत कह रहे हो, अब आदत नहीं है डैड को ये सुनने की, ये है उनकी खराबी। तो ये क्या है, अगर हम ध्यान से देखें एकदम निष्पक्ष होके, ये जो जिसको हम जेंजी कहते हैं, अब हम प्रेजेंट पे आ रहे हैं, जेंजी जिसको कहते हैं, मिलेनियल चिल्ड्रन कहते हैं, इत्यादि इत्यादि कहते हैं, ये क्या है, इनके अंदर क्या ऐसी चीज है जो हमको अच्छी नहीं लगती है? दो चीजें हैं, तीन चीजें हैं जो हमको एकदम अच्छी नहीं लगती है। एक है कि ये ऑथेंटिसिटी को ज्यादा मानते हैं अथॉरिटी की जगह। आप उनको ये नहीं कह सकते कि हमारी उम्र बड़ी है इसलिए तुम्हें हमारा आदर करना है, वो आपको इमीडिएटली स्लाइस अप कर देंगे, कहेंगे इफ यू टेल मी ठीक है आई विल रिस्पेक्ट यू बट यू शुड नो दैट आई डोंट रियली रिस्पेक्ट यू। एक आईना है उनके पॉकेट में, दिखाते हैं आपको। वो इसलिए आदर नहीं करेंगे, वो देखें कि आप आदर के योग्य हैं कि नहीं, उनके अपने क्राइटेरिया हैं। उनके क्राइटेरिया ये नहीं है कि आपने धोती पहनी हुई तो आप आदरणीय है, आपने हनुमान चालीसा रोज करते हैं तो आदरणीय है। वो तो देख रहे हैं कि आपके अंदर वो जो सब पढ़ रहे हो वो कितना है। आप रोज पढ़ते हो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जोग दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मही हरहूं कलेश विकार। आप तो समझते हो कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। यहाँ तो प्रारंभ हो रही है प्रार्थना बुद्धिहीन तनु जान के, हालांकि हनुमान जी वहां वानर शरीर की बात कर रहे, इसलिए मैं ये स्मरण करता हूं। अब ये तो मैं एक कर रहा हूं, अगर आप केवल हनुमान चालीसा में जो हनुमान जी के गुण हैं उसमें दो चार ही अगर हमारे अंदर आ जाए कितना सुंदर हो। तो अगर आप एकदम निष्पक्ष रूप से, ये बच्चों के अंदर एक एक्सरे विजन है, मिलेनियम चिल्ड्रन, और मैं जानता हूँ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको दो तो मैं एकदम अपनी आँख के सामने की बात है, वो दिखाता है कि आज के बच्चे कैसे हैं। कि एक बच्चे से पेरेंट्स कह रहे थे, वो अरे आपस में बात कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा अरे उसको हम टाल देंगे आएगा तो बच्चे से कहा अगर वो अंकिल आए तो कह देना कि मम्मी पापा घर पे नहीं है। सामने की बात बता रहा हूँ, हालांकि इस पर बाद में कहानियाँ भी बनी हैं। तो बच्चे ने कहा क्यों? अब क्यों का क्या सवाल है, प्रॉब्लम है अंकिल के आने से? तो कहते हैं तो आप हमें झूठ बोलने को कह रहे हैं। बात सही थी, अब पेरेंट्स काटो तो खून नहीं, झूठ बोलने को कह रहे। एक और बच्चे की कहानी सुनाता हूं, तो उसको पेरेंट जोर से डांट रहे थे, तो बच्चे ने कहा आप ज्यादा डांटोगे तो मैं वापस वहां चला जाऊंगा जहां से आया हूं। 5 साल का बच्चा, पेरेंट को समझ नहीं आ रहा है ये क्या बातें कर रहा है। और तीसरा जो बहुत ही आश्चर्य की बात है, ये आज के बच्चों में है, ये तीसरे बच्चे की कहानी, जब वो स्कूटर पे जा रहा है और पास में किसी की डेथ हो गई है, रास्ते में देखा ओ मृत्यु होती है, लोग अपने ढंग से उसको जो भी करते हैं सेलिब्रेट हो या दुख प्रकट करना, तो बच्चे ने पूछा कि ये रो क्यों रहे हैं? तो बताया गया बच्चे को कि किसी की मृत्यु हो गई है। बच्चा कहता है कि मृत्यु हो गई तो रो क्यों रहे? अब मृत्यु हो गई तो रो क्यों रहे हैं? तो पूछा गया बच्चे से कि मतलब क्या है तुम्हारा, कहते वो तो फिर आ जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। उसको कोई पुनर्जन्म की बातें नहीं बताई गई हैं, 5 साल का बच्चा, वो तो फिर आ जाएंगे। ये लोगों को तो पता है, रोज गीता पढ़ते हैं पर रो रहे हैं। देखिए सारे गीता प्रेमी पाठक, अरे बड़ी सैड न्यूज है, लिखते हैं ऐसे लिख लिख के आता है। और मैं जानता हूं कि ये सब गीता पाठक हैं, और आता है आई हैव सैड टू इन्फॉर्म यू। तो या तो आप क्या गीता पठन मिथ्या है या मतलब मुझे आश्चर्य होता है, ओके इट्स ए सैड न्यूज आई अंडरस्टैंड, इतना भी नहीं कि आपने उसको, कम से कम एक भारतीय, एक हिंदू सिख कोई भी, सारे भारतीय मानते हैं कि इट्स ए प्रोसेस, इट्स ए जर्नी। और उस जर्नी में एक, मैं रियली बताता हूँ कि ये जो जेंजी का ये जो चीज़ है, नई जनरेशन कैसे सोचती है, और मैं तो खुद को भी उसी में काउंट करता हूँ, हालांकि मैं जेंजी नहीं हूँ, उस टेक्निकली मिलेनियल्स में हाँ। तो हाल में एक बहुत, अपने नानी जी की डेथ हो गई किसी की, तब वहाँ चिता को आग दे दी गई है, वहाँ लोग हैं, अब उनकी बेटी, उनका बेटा और मैं भी खड़ा हूँ। तो उसने, बेटे ने एक जोक सुनाया उसके, जब मम्मी प्रेजेंट थी तब तो बेटी ने भी उस जोक पे तो फिर आपस में उन्होंने कहा कि अरे कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा कि हम, मैंने कहा नहीं, मैं प्रेजेंट था, मैंने कहा नहीं, तुम्हारी जो माँ है ना बड़ी खुश होंगी कि बच्चे खुश हैं। बोले हाँ ये तो सही है, वो बड़ी खुश होंगी जाते हुए कि मेरे बच्चे खुश हैं। आई सेड माँ थोड़ी कोई दुख मानेगी कि अरे मेरे बच्चे मेरे मैयत पे दुखी हो रहे हैं, माँ तो बच्चे की खुशी में खुशी ढूंढती है, बचपन से उसका ये फॉर्मेट यही है, अगर वो देखेगी बच्चे खुश हैं तो शील बी वेरी हैप्पी, वाई वुड शी बी अनहैप्पी। कोई माँ का प्यार इगोइस्टिक प्यार थोड़ी होता है कि अरे मेरे जाने पर इनको रोना जरूरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक हिपोक्रेसी का एक पूरा जगत। तो भविष्य में जब माँ से पूछा गया था, इसी में हम लोग करते करते भविष्य की ओर जा रहे हैं, तो ये बच्चों में ऑथेंटिसिटी ओवर अथॉरिटी है, दूसरा जो वो बिल्कुल डिसलाइक करते हैं वो है हिपोक्रेसी। एक बार माँ से किसी ने पूछा, माँ सुप्रामेंटल वर्ल्ड में क्या चीज है जो नहीं होगी, चली जाएगी? तो माँ कहती है नहीं होगी, क्यों, कोई चीज नहीं होगी, सब कुछ होगा लेकिन अपने सही जगह पर होगा और रूपांतरित रूप में होगा, जो हम लोगों ने रित की बात कही ना, रित चित, सही जगह होगा। माँ कहती है कि संसार की एक सबसे बड़ी समस्या है कि चीजें सही जगह नहीं है। इसको हमारे बोल गए बड़े सुंदर ढंग से, सूरदास जी का भजन है जब वो कहते हैं मूर्ख मूर्ख राज करत हैं पंडित फरत फिरत भिखारी। और माँ ने बताया कि एक कलयुग का एक प्रभाव ये भी रहा है कि उसने सारे जो अनसेटल्ड हुई है जीवन में चीजें, कि चीजें वहाँ नहीं है जहाँ होना चाहिए, ये है, ये फैक्ट है और वो चेंज होगा। परंतु साथ में एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो नया जगत कैसा होगा, माँ कहती एक चीज नहीं रहेगी इस नए जगत में। तो लोग सोच रहे थे क्या नहीं रहेगा, माँ कहती हिपोक्रेसी। अब देखिए ये हिपोक्रेसी आज के बच्चों में बड़ी प्रबल रूप से है, वो हिपोक्रेसी के लिए, केवल दिखावे के लिए, उनको अगर आप बोलो दिखावे के लिए चीज करनी है, नहीं नहीं बड़ा बड़े लोग बुजुर्ग खुश होंगे, दे कैन नॉट डू इट। हो सकता है कर दें क्योंकि धन संपत्ति आनी हो, आप बड़े खुश हो रहे हैं कि नहीं उन्होंने हमको आदर दिया, कोई आदर वगैरह नहीं, दे आर वेरी क्लियर। तो ये दूसरी चीज जो है कि ना केवल ऑथेंटिसिटी, दूसरा हिपोक्रेसी का अभाव, ये जा रहा है संसार में, वे सारी चीजें। और इसीलिए हम लोग कई बार नहीं देख पाते हैं बहुत सी चीजें जो दबी हुई थी हमारे अंदर, वो आज के समय में कैथारसिस की तरह निकल रही हैं। तो कई बार समझ नहीं आ रहा, अरे इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने, उसने क्या, ये चीजें थी दबी हुई, हमने इसको स्वीकार नहीं किया, या वो समाज में एक बड़ा विकृत रूप लेके आती थी जिसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, पास्ट हो गया, पर प्रेजेंट में वो ओपन में है, ओपन में है। तो एक छिपा हुआ छद्म रूप धारण किए हुए ईविल, वह बेटर है या ओपन ईविल बेटर है, ये हम सब इसका उत्तर जानते हैं। छिपा हुआ छद्म रूप धरे हुए कालनेमी हनुमान जी को भी बुद्ध बना सकता है, कम से कम कुछ क्षणों के लिए, लेकिन जो ऑब्वियस ईविल है उसका आप सामना कर सकते हो. अब वो चीजें छिपी हुई नहीं रही हैं, वो सामने आ रही हैं. अभी कुछ समय पहले किसी ने ये पत्र लिखा था गजेंद्र मोक्ष की कहानी को. कई बार लोग कहते हैं ये कोई नई चीज, हमारे स्क्रिप्चर्स में ये है. गजेंद्र मोक्ष की कहानी क्या है? यही कहानी है कि वो इंद्रद्युम्न राजा हैं, बड़े अच्छे राजा हैं, फिर वो संन्यास लेना चाहते हैं, संन्यास लेके बैठे हैं. अगस्त ऋषि आ रहे हैं और आते हैं जब उनके आश्रम, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. इनको भूख लगी है और रिस्पॉन्ड नहीं करते. तो अगस्त ऋषि देखते हैं दृष्टि से कि इसकी जो चेतना है ना बड़ी डल है. यानी वो बैठा है जैसे उसने संन्यास ले लिया है, राज्य दे दिया है, पर चेतना उसकी बड़ी डल है, स्थूल है. इसके अंदर अभी भी स्वप्न में वही चल रहा है, सुख जो उसने त्यागा है. ये भी होता है ना, जब कोई सन्यासी है कहे हमने क्या छोड़ा. अच्छा आपको याद है क्या छोड़ा? कहती है जगह कि देन यू हैव गिवेन नथिंग टू द डिवाइन. इफ यू रिमेंबर व्हाट यू हैव गिवेन टू द डिवाइन, दैट मीन्स यू हैव नॉट रियली गिवेन टू हिम बट टू योर ह्यूमन ईगो. तो याद है कि भाई क्या छोड़ा. तो वो राजा इंद्रद्युम्न इसको समझ जाते हैं. अगस्त ऋषि उनको श्राप देते हैं कि तुम मानव योनि से नीचे गिरोगे और गज की योनि में आओगे. अब गज की योनि में उनकी जो सारी जो अंदर में भावनाएं छिपी हैं उनकी कैथारसिस होती है. फिर राजा बनते हैं. किसके राजा बनते हैं? वो एलिफेंट वर्ल्ड के राजा बनते हैं. एक किसी अन्य लोक की बात हो रही है. जैसा मैंने कहा ह्यूमंस आर नॉट नेसेसरली अर्थली बींग्स. जब हम पुराणों में पढ़ते हैं तो ये सारी जो मनुष्य से हम इमीडिएटली कनेक्ट करते हैं धरती की बात है, नॉट नेसेसरी. तो वहां पे जो गजेंद्र भी जो जन्म लेते हैं, और अगर हम उसका वर्णन पढ़ें तो वहां एक पर्वत है जहां पे खूब सारे मोती वगैरह बिखरे हुए हैं. इट्स नॉट अन अर्थली वर्ल्ड. टाइम भी अर्थली टाइम नहीं है. क्यों? क्योंकि जब गज को ग्रह पकड़ते हैं तो वहां पे गज कितने सौ वर्षों तक लड़ते हैं युद्ध, एटलीस्ट मैनी ईयर्स आई हैव फॉरगॉटन. तो धरती की बात नहीं हो रही है. तो किसी और सेलेस्टियल वर्ल्ड में ये गज के रूप में जन्म लेते हैं. ये राजा हैं, गजेंद्र हैं, इनकी अनेकों रानियां हैं और अनेकों संतानें हैं, और वो समझते हैं कि मैं तो बस सब कुछ हूं. और तब उस जब उनकी कैथारसिस पूरी हो गई, अब पूरा टाइम खत्म हो गया, ये सारा प्रवृत्तियां निकल गई, तो जब वो आते हैं जल के अंदर और ग्रह क्रोकोडाइल पकड़ता है, तब उनके पहले लड़ते हैं मैं राजा हूं आफ्टर ऑल, फिर वो देखते हैं कि कोई भी उनको बचाने नहीं आता. बड़ी टचिंग स्टोरी है. सारे उनके बच्चे कुनबे वो साइड में खड़े कि क्या हो रहा है, कहीं हम ना फंस जाएं. रानियां रो रही हैं, गज गज रानियां, पर कुछ नहीं कर रही हैं. तो उनके अंदर से फिर अंत में नारायण नारायण नारायण, और उनको सब कुछ याद आ जाता है अपने पास्ट लाइफ का पूरा जो साधना थी. और तब श्रीहरि आते हैं और उनको मुक्ति होती है. और सारूप्य बहुत अद्भुत है वो कहानी. अब और डिटेल की आवश्यकता नहीं. यह हम लोगों ने अपने भागवत पुराण सीरीज में ये कहानी ली हुई है. लेकिन मूल चीज़ ये है कि कई बार जब भगवान प्रारंभ करते हैं नई सृष्टि की रचना, तो एक कैथारसिस का प्रोसेस होता है. ये जो योग में प्रवेश करते हैं वो भी जानते हैं कि जब हम योग में प्रवेश करते हैं तो आपको लगता है आप मैन टू सुपरमैन बनने आए हैं. आश्रम ज्वाइन कर लिया है, अब आप सुपरमैन बनोगे. लेकिन सुपरमैन बनने के पहले जो आपके अंदर जो एनिमल मैन छिपा हुआ है, जो दिख नहीं रहा था बाहर के सभ्य समाज में, आप सबको नमस्कार जी, आप बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छा हूं, वो डिब्बा लिड भगवान खोल देते हैं. कहते पहले तू अपना, कहते हैं कैन ऑफ वर्म्स. ये प्रोसेस है, योग की प्रोसेस है जो गजेंद्र मोक्ष में दिखाई गई है. ये केवल कहानी उनकी नहीं है, ग्रेस की. सेम अजामिल की स्टोरी में है. सेम, इट्स नॉट जस्ट दैट ही वाज अ बुचर, उसकी भी एक पास्ट है. बट व्हाटएवर इट बी, तो अब हम देखते हैं कि ये एक जिसको कहा गया इंटरमीडिएट स्पेसीज बिटवीन पशु और मनुष्य, उसी प्रकार से एक इंटरमीडिएट माने कहा है कई एबॉर्टिव इंटरमीडिएट स्पेसीज आएंगी. अब ये एबॉर्टिव स्पेसीज का क्या मतलब है? क्योंकि ये इवोल्यूशन की प्रोसेस है. बहुत कुछ है हमारा पास जो हमारे अंदर है, जिसको हमने दबा करके मनुष्य बने हैं. साइकोलॉजी भी ये बताती है. पशु है हर किसी के अंदर, इसीलिए कहते हैं ना किसी के बेडरूम में मत झांकना. कौन सा पशु निकल रहा होगा, छिपा होगा, इसीलिए लोगों ने भी भगवान को एक अलग पूजा घर में बंद किया हुआ है, बेडरूम में नहीं रखते हैं, डरते हैं भगवान सब देख लेंगे, गुस्सा कब कहाँ कर रहे थे। अब भगवान की तो प्रवृत्ति है, वो आपके पूजा रूम से निकलेंगे, आएंगे आपको ज़्यादा प्यार करने लगे तो मूल चीज़ ये है कि ये चीज़ें दबा करके मनुष्यता का विकास हुआ है। अब अगर मनुष्यता के परे जाना है तो हमको उस एनिमल और उसको कन्फ्रंट करना है। मॉडर्न साइकोलॉजी बताती है कि हर किसी के अंदर ये तीन लेवल छिपे हुए हैं, एक ब्रेन के अंदर हैं, रेप्टिलियन ब्रेन, मैमेलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन। वो प्रवृत्तियां हैं, जब पड़ोसी से लड़ाई होती है तो रेप्टिलियन ब्रेन सामने आ जाता है, अब तो नहीं होती है, बहुत अच्छा है, सब अपने अपने घरों में बंद हैं, लोग बड़ा परेशान होते हैं इससे, लेकिन मैंने देखा है पड़ोस क्या होता है, अच्छे से अच्छा पड़ोस, उसकी लड़की किसके साथ अफेयर है, वो कहाँ भाग गया, वो कितना, अब ये सब आपका बंद है सिस्टम। क्यों? क्योंकि पड़ोसी अपने अपने घरों में बंद है, ये बेकार की जो बकवास होती थी चली गई। अब क्या है कि आप अपने आप को देखो, आप बंद हैं, यू हैव ऑप्शन इज दैट। लेकिन ये चीज़ें मनुष्य के अंदर छिपी रही हैं, पशु छिपा रहा है, ये सारे जो स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, पिशाच, राक्षस, असुर, तो जब इवोल्यूशन एक्सेलरेटेड मोड में जाता है तो ये सब चीज़ें बाहर आती हैं। आपने कल्पना में एक हवाई जहाज बना लिया, बहुत आसान है, बात हो रही थी विमान शास्त्र भारद्वाज ऋषि का, पूरे डायग्राम के साथ है वो, यंत्र चालित, मंत्र चालित, तंत्र चालित। तो किसी ने कहा कि भाई ये तो विमान बना नहीं, तो ये हम कैसे मान लें कि ये सच है, उन्होंने लिखा है। भाई सच है, लेकिन उसमें और बनाने में बहुत बड़ा अंतर है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्होंने बनाया और कहीं विलुप्त हो गया, नहीं, ये अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं उसका रहती छाप, पुष्पक विमान कम से कम मास स्केल पर प्रोडक्शन नहीं हुआ था। पर व्हाटएवर इट इज, एक चीज जो हमारे मन के अंदर आती है, जन्म लेती है और वो जो भविष्य में प्रकट होती है, उसमें अंतर होता है, बहुत बड़ा टाइम लैग होता है। अब उसको हम अगर मनुष्य की यात्रा से जोड़ें, मिलियन ईयर्स, तो अब मनुष्य के अंदर ये जन्म ले रही है एक नई चेतना, ये कैसे पता चलेगा? देखिए आप संसार में कहीं नहीं जाना, कोई स्क्रिप्चर नहीं पढ़ना है, किसी बच्चे से पूछ लीजिए। और इसको आज हम जिसको जेंजी का प्रोटेस्ट कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे पॉलिटिशियंस मिसयूज कर रहे हैं, ये सब सच है, लेकिन आप एक एवरेज बच्चे से पूछो तो बहुत कुछ है जो नहीं स्वीकार करता है, और वो चाहता है कि एक संसार हो जो सुंदर हो, जहां फ्रीडम हो, जहां पे सच हो। उसको केवल इसलिए काम नहीं करना चाहिए क्योंकि समाज कहता है। अब देखिए एक इंडिविजुअल स्टेज ऑफ इवोल्यूशन आ गई है, और इन बच्चों से अगर हम बात करें, थोड़ा समय बिताएं, जज नहीं करें, हमारी समस्या है कि हम जज करते हैं, माता पिता के पांव नहीं छूते, पांव नहीं छूते, कितना सुन सुन के, बात नहीं मानते, बात नहीं सुनते, ठीक है, वो अपनी सुनना चाह रहे हैं, दे विल मेक मिस्टेक्स, गलत होगा, पर वो सीखेंगे, ग्रो करेंगे, वो क्लोन्स नहीं बनेंगे माता पिता के, they are not going to become clones of the past. That's why, और ये world over ये studies हुई है कि 1960 के बाद ये अचानक पृथ्वी के अंदर भूचाल जैसा परिवर्तन क्यों आया है, actual studies हुई हैं, और इनके बारे में जब महर्षि अरविंद की तरफ नहीं मुड़ा था तब से ये चीज़ जानता हूँ। 70s की बात FMC में मुझे याद है, हम लोग इसकी चर्चा करते थे कि 1500 वर्षों में जो चेंज नहीं आया, अचानक कैसे आ रहा है, और हर लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, हर लेवल, स्पिरिचुअल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे आप देखिए, बच्चे मंदिर नहीं जाते हैं, हाँ ठीक बात है, नहीं जाते हैं मंदिर, खाली पर मंदिर ही नहीं, चर्च, इंग्लैंड में 4/5 से ज़्यादा चर्च, 80% खाली पड़े हैं। तभी तो वो सारे भारत में आके कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं है पॉपुलेशन। इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, उनको पता नहीं है, वो क्रिश्चियन बन जाएगा नाम का, लेकिन वो यहाँ से भी, जहाँ से बेनिफिट मिलना है वो ले लेगा, उसको कोई यीशु मसीह से लेना देना नहीं है, वो चला भी जाएगा चर्च के अंदर। आफ्टर ऑल हम ये सब से गुजर चुके हैं, लोग बड़े परेशान होते हैं इससे भी, कहते इंडियन जानता है उसको क्या करना उसकी। लेकिन वो जाएगा, नाम बदल लेगा, बेनिफिट ले लेगा, इंग्लैंड जाना है या अमेरिका जाना है, पर वो कहते हैं जिसको दिल है हिंदुस्तानी, आई हैव मेट नंबर ऑफ देम, पर वो एक अलग कहानी है। पर कहने की बात यह कि यूरोप में ये समस्या, और ये आप देखिए किस तरह से ये स्प्रेड हो रहा है, जो जिसको हम लेफ्टिस्ट थॉट कहते हैं, अमेरिका में ये समस्या हो रही है, इस्लामिक वर्ल्ड में ही प्रारंभ हो गई है एक्स मुस्लिम का मूवमेंट, अब भारतवर्ष में ये एक अलग रूप लेता है, ये नहीं ले रहा है, ये रूप एक अलग रूप ले रहा है। भारत ने इन चीजों को एक्सेप्ट करके अपने फोल्ड में आगे बढ़ा है, बाई नेचर कलेक्टिव इवोल्यूशन में हमने विश्वास किया है, ऐसा नहीं किया जेंजी नहीं है, पर अगर जेंजी बोलेगा मैं भगवान में नहीं मानता तो ऐसा नहीं है कि घर घर में कलह क्लेश बाहर निकाला, नहीं कोई जरूरी नहीं है, नहीं जाते हैं मंदिर, सच बात है। इंग्लैंड में ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, मैं डायरेक्टली बात करके जा करके जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको बड़ा खराब लगता है कि चर्चेज नहीं जाते, क्राइस्ट में नहीं मानते, लेकिन जब आप इन बच्चों से बात करो बड़ा अद्भुत है, ओके दे बट वाई गॉड इज इन अस। अमेरिका में इस पर स्टडी हुई थी कि ये लोग चर्च नहीं जाते, इनके साथ क्या हो रहा है, तो स्टडी का जो नतीजा पाया गया ये शायद 10 साल पहले की होगी, तो उसको उन्होंने इस शीर्षक के साथ पब्लिश किया था, आर 75% ऑफ अमेरिकन्स टर्निंग हिंदूज, नाम नहीं बदले उन्होंने पर उनकी उन्होंने मान्यताएं देखी, तो उन्होंने केवल स्टडी की कि भाई इनकी क्या मान्यताएं हैं, तो उनसे पूछा गया तुम एक लाइफ में विश्वास करते हो या कई जन्मों में हो, कहा कई जन्मों में, और उनकी अपनी लॉजिक थी। उनसे कहा गया कि क्या भगवान चर्च में पाया जाता है गिरजाघर में, उन्होंने कहा नहीं भगवान हमारे अंदर पाया जाता है। उनसे पूछा गया कि क्या बाहर की पूजा पाठ ये सब जरूरी है, कहते नहीं, यू कैन हैव योर ओन कनेक्ट। गाने आए थे, आई एम नॉट नाउ स्पीकिंग अबाउट दोज सॉन्ग्स, गाने आए थे, ऐसे ऐसे गीत आए थे ऐसे गायकों के साथ जिनको आप कनेक्ट नहीं करते एक न्यू क्रिएशन से। कौन सा गाना आया था, एक बड़ा एक तो था वी वॉन्ट नो एजुकेशन, पॉल मैकार्टनी का था, ये पिंक फ्लॉयड का था वी वॉन्ट नो एजुकेशन। एक और गाना था जो अगर मैं गायक का नाम बताऊंगा तो आप कहेंगे किसका गाना है, ओके हमारे माई का लाल जयकिशन जी का गाना है। क्या गाना है वो जो अर्थ होगी टुमारो टुमारो विदाउट बॉर्डर्स। बीटल्स ने भी इस तरह के गाने गाए, ये कब से शुरू हुए, 60s से। अब वहां पे इसने एक ऐसा रूप लिया जिसमें आप रिवोल्ट कर रहे हैं इस सृष्टि में जो भी हो रहा है उसके साथ, और रिएक्शन हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि हमें बाउंड्रीज नहीं चाहिए, हम पूरे विश्व के निवासी हैं। आज के बच्चे इस विश्व बंधुत्व के भाव से ओतप्रोत है। प्रारंभ कैसे हुआ था, ऐसे प्रारंभ हुआ था जब हम लोगों को बड़ा जो प्योर टू टाइप होता था कि भाई ब्राह्मण की ब्राह्मण में शादी होगी, मेरे जनरेशन तक था कि भाई उसमें भी था 20 विश्वा ब्राह्मण है या कोई और ब्राह्मण है, इस हद तक था। तो हमारी तो भाई मैरिज वैसे अलग ही हो गई, तो फिर जो भी बड़े निराश हुए जो भी लोग थे, पर ये उस समय तक ये बात थी। आज के बच्चों में आप पेरेंट्स इस अवस्था में आ गए कि भैया आप बस मान लो लड़की ढूंढ लो कहीं भी पूरे ग्लोब में, हम तुम्हारी शादी कर देंगे। बच्चे एक कदम आगे हैं, कहते हम शादी क्यों करेंगे, हम साथ रहेंगे। तो आप पूछेंगे भाई शादी क्यों नहीं करना चाहते, कहते अगर प्रेम है तो विवाह की क्या आवश्यकता है। यहां तक चली गई ये बात, बहुत आगे बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये हो गया, यू जस्ट कांट हेल्प इट, क्योंकि दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। आपको पसंद है नहीं पसंद है, भगवान ने जब दक्ष प्रजापति का सिर पीछे घुमा दिया था तो वो कह दिया था उन्होंने कि भाई दिस इज हाउ इट इज, अब आप नहीं जा सकते हो पीछे, भगवान ने पीछे जाने के ऑप्शन बंद कर दिए। अब ये जो हम अभी ये तो, और इसके बारे में तो अभी ये तो बहुत बड़ा विषय, जैसा मैंने कहा ये एक हफ्ते भर का विषय कि ये कहां ले जाएगी, मैं तो बस दो पंक्तियां, एक है बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ये बच्चे तो अभी बस इनके पर निकले हैं, ये यहां रुकने वाले नहीं है, ये पुराना फॉर्मेट खत्म हो गया है। लेकिन ये कहां तक जाएंगे इसकी बात केवल श्री अरविंद बता सकते हैं, और वो बताते हैं एक वास्ट चेतना जिसको हम सत्यम ऋतम बृहतम, उस चेतना में ये बच्चे जी रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने जीना प्रारंभ कर दिया इस तरह से, सत्यम, हिपोक्रेसी को लाइक नहीं करना, ऑथोरिटी की जगह ऑथेंटिसिटी, ये क्या है, ये सत्य का प्रारंभ है। और ये जैसा मैंने बताया बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, लेकिन समय हो गया इसलिए मैं केवल दो पंक्तियां जो हैं किसी और कंटेक्स्ट में, कंटेक्स्ट बता करके, और वो कंटेक्स्ट तो वो है जो चाणक्य में आया था, प्रारंभ है आरंभ है प्रचंड। अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो प्रारंभ है और एकदम धमाके से नए युग का प्रारंभ हुआ है, और ये कहां ले जाएगा इसको केवल एक शब्द में अगर कहा जाए, पशु से जुड़ा हुआ मनुष्य जिसके अंदर कुछ मानवीय संवेदनाएं जन्मी थी और वो उछल रहा था कि मैं बहुत ऊपर हूं, आने वाले समय में देव मानव के रूप में उसका रूपांतरण होगा। अभी हम जो देख रहे हैं वो केवल कैथारसिस है, गजेंद्र मोक्ष की कथा चल रही है। और ये मैं देख रहा हूं कितने लोगों में कि कैथारसिस हो रही है और अचानक वो मुड़ रहे हैं, और जब वो मुड़ रहे हैं तो बिल्कुल एकदम अद्भुत ढंग से मुड़ रहे हैं। तो ये जो बोझा हम लोग अपने अंदर कैरी कर रहे थे, मनुष्य का बोझ, सावित्री में एक पंक्ति है, मैन लिफ्टेड ऑफ द बर्डन ऑफ हिज फीट, अब वो बोझ भगवान इस तरह से क्षीण कर रहे हैं। इसको हम अगर कर्मों के ढंग से देखें तो वो कर्मों का क्षय हो रहा है, लेकिन अंदर में जो चैत्य सत्ता है वो बड़े प्रबल रूप से जागृत हो रही है, जो आइडियलिज्म के रूप में बच्चों के अंदर प्रकट हो रही है। और यही आइडियलिज्म बाद में मन की भूमि से पार जाकर सीधा हम लोगों को देव भूमि देव मानव और दिव्य भूमि दिव्य मानव की ओर ले जा रहा है। जय मां। मुझे विराम देना पड़ रहा है, ये बहुत बहुत अद्भुत विषय है, अभी तो प्रारंभ है।
26 तारीख को नया सेशन रख सकते हैं इस
पर। 26 कौन सी 26? हाँ रख सकते हैं यहाँ। थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा इसको अंदर में जाने दीजिए, वी विल डू इट। हाँ डेफिनेटली भविष्य भविष्य के ऊपर रख लेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी।
जय मां।
आपने पास्ट में क्या था जिसको हम कहते हैं कि वो कैसा था और आज क्या वर्तमान में आते हुए आपने बताया कि आगे जो बालक आएंगे, आगे का जो मानव होगा वो प्रेम मानव के रूप में होगा, तो आपने पास्ट से लेकर तो आगे तक की बात करी, मानव की लोक प्रजातियों से आपने शुरू किया और बहुत सारे उदाहरण सावित्री से और हमारे पुराणों से आपने दिए ये समझाने के लिए कि हम निरंतर विकास की ओर है और ये नई पीढ़ी है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है विकास की ओर और प्रेम मानव के रूप में हम आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब ये मंच खुला है, कोई प्रश्न टिप्पणी कोई भी कहना चाहे तो स्वागत है।
पोद्दार जी से शुरू करें।
पोद्दार जी पहले, सबसे पहले पोद्दार जी का आशीर्वाद।
मुझे जो अंत किया जाता था भले जी जब भी बाकी है बोलने को, लेकिन आलोक जी से जैसी आशा थी उसे आशा थी वर्णन उन्होंने किया
अभिलाष,
शुरू में ये ठीक कह दिया।
संजू को फोन कर दो, देर हो रही
है। बहुत विस्तार पूर्वक इसको कई बार उसके ऊपर टिप्पणी करना आवश्यक है, लेकिन जितना उन्होंने कहा है उसका छोटा सा अंश भी अगर अपने उतार लें तो काफी है। मैं समझता हूँ ट्रेडिशन की मौत जो आज पर याद आ जाती है उसकी लास्ट लाइन ये थी, ओल्ड ऑर्डर चेंजेस giving place to new. And God will place himself in many ways, lest one good custom may corrupt the world. अंतर तो होना ही आना ही पड़ेगा क्योंकि रूपांतर रूपांतर होना ही पड़ेगा क्योंकि जो है वही चलता जाएगा तो उसमें फिर वो खराबी आने लग जाएगी। एक और ज्ञानी ने कहा था, कौन बर्टन रसेल या बर्नर्ड शॉ पता नहीं, राधा कृष्ण जी ने रिपीट किया था, फ्रॉम द ऑल्टर ऑफ आवर पाथ लेट अस कलेक्ट द लिविंग फायर एंड लीव बिहाइंड द डेड लाइट। ऐसा नहीं कि पास्ट में कुछ नहीं है, पास्ट में भी था, आगे के लिए भी काम आ सकता है, जो भी था जो प्रचलित प्रचलित जो अग्नि थी पास्ट के में उसको अपने साथ लेके चलो और जो राख हो गई उसको छोड़ दो। तो इस तरह ग्रंथों में अलग अलग भाषाओं में सब जगह लोग घूम फिर के एक ही जगह आते हैं और वेदों में तो सब जगह कहते हैं नियति नियति, अभी और है अभी और है ये नहीं है चढ़ेवती करते चलो करते चलो। तो वही है जितना धारण कर रहे सत्य सत्य स्वरूप से उतना ही अच्छा है।
मनोज जी कुछ बोला, मनोज जी, मनोज जी शर्मा
भैया ना बहुत आवाज आ रही सर मेरी
आ रही।
भैया ने बहुत सुंदर समझाया और जो उन्होंने एक लाइन बोली अभी आगे आगे देखती हूँ, उससे मुझे एक शेर याद आ गया, सब लोग एंजॉय कर लेंगे। उस शेर ऐसा है, क्यों हिजर से सिकवे करता है क्यों रंज के रोने रोता है, जब इश्क किया है तो सबर भी कर, इसमें तो यही सब होता है। अभी तो शुरू हुआ है। बहुत
शुभकामना। अनम्यूट
करिए। बड़ा सुंदर लगा और मैं उनके एक एक शब्द का मनन कर रहा हूँ। जैसे उन्होंने कहा इट इज सेड टू इन्फॉर्म, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम इन्फॉर्म करते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आया तो हमें क्या लेना चाहिए। मुझे हर्ष हो रहा है कि ऐसे ऐसे
नहीं, भाव जो भाव जोड़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है कि अब वो द सोल हैज ट्रांजिटेड ऑन, तो अब उसमें हम भाव यदि है सच में हो रहा है तो हमें देखना चाहिए कि क्यों ये भाव आ रहा है, और यदि नहीं हो रहा है तो जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इट्स एनफ टू राइट दैट यू नो सो एंड सो, वो ट्रांजिट में चले गए अपने आगे की यात्रा में प्रयास प्रयाण कर गए बस।
उसका संरक्षण संरचना इस तरह की जा सकती है कि दुख का शब्द प्रयोग में ना आए,
हाँ
वो अपने घोड़ों पास ही हो।
बस 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 बिल्कुल।
दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब ने ऑथेंटिसिटी ओवर अथॉरिटी, इसमें मैं कहूंगा कि हम लोगों में बड़ा मिक्स क्या है कि हम बच्चों से उम्मीद भी करते हैं, शिक्षा भी देते हैं और अथॉरिटी भी चलाती है, लेकिन हम जो कुछ कर रहे हैं जो हमारी मान्यता है उनकी ऑथेंटिसिटी हमें ही नहीं मालूम।
बिल्कुल बिल्कुल।
जो गजेंद्र मोक्ष का द्रौपदी का इन सबका जो विवरण दिया उसके पीछे जो ऑथेंटिसिटी है उन सबकी कथा कोई नहीं मालूम है, तो हम बच्चों को जब तक हम नहीं समझाएंगे तो हम उनको दोष नहीं दे सकते।
बिल्कुल।
और इसके अभाव में उनके जिज्ञासाओं को हम नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें स्वीकार करने का हमारा कर्तव्य है। देखिए मैं एक बड़ा प्रकार उत्तर दे रहा हूँ कि हमारे परिवार में जैसे विवाह होते हैं तो लड़के देखी जाते हैं, सर्च होती है और परिवार देखा जाता है कितने पैसे। अब उस अधिकतर कन्या विवाह हो रहे हैं। अब मेरे नाती ने किया, नातनी ने किया, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरे घर में कितना सुख है मैं ये बता सकता हूँ? मैंने उन पर कोई जोर नहीं चलाया, कोई वो नहीं किया। स्वीकार होना है, ये सीख मिलती है बहुत सी बातों से आलोक जी की, से कि हम अपने को जो हम कहे वो ही मानवता है, ऐसी बात नहीं। जो दूसरा मानता है उसको भी हमें समझना पड़ेगा।
सावित्री, तो सावित्री में तो स्वयंवर की बात है और वर्णन है, विवाह का वर्णन, पूरा गंधर्व विवाह का वर्णन है, लेकिन अद्भुत है। हाँ बिल्कुल,
तो अब ये स्वीकार करना पड़ेगा।
हाँ,
तो बच्चे जब पूछते हैं कि इतना रुपया बर्बाद क्यों हो रहा है, एक एक शादी में, एक एक कार्यक्रम में लाख एक करोड़ रुपया दे रहे हैं।
बिल्कुल,
मैंने पूछा, मेरे एक बहुत ही अनुज ने, चचेरे भाई ने एक शादी में बुलाया आर्टिस्ट को, 80 लाख रुपए दिए।
Exactly.
जब मालूम पड़ी तो मुझको बड़ा दुख हुआ। मैंने फिर उससे प्रार्थना की, भाई हमारा पारिवारिक 400 वर्ष पुराना मंदिर है, उसमें तुम 10,000 रुपए ही दे दो। तो उसके लिए उन्होंने 1100 रुपए का चेक भेज दिया।
बिल्कुल सही,
चलो कुछ तो भेजा। यहाँ 60 लाख रुपए उसको, क्या 1100 रुपए। तो ये
आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ एक क्षण के लिए। आश्रम में क्या होता है शायद कई लोगों को पता नहीं है। अब ये चीज समाप्त हो गई, मतलब समाप्त नहीं, उसी रूप में चल रही है किसी ना किसी रूप में। आश्रम में विवाह कैसे होता था बहुत कम लोगों को पता है। तो श्री माँ के, श्री अरविंद के कक्ष में जाते थे जो विवाह करना चाह रहे हैं, और वो बस वहाँ पे रिंग एक्सचेंज करते थे, और उसके बाद एक माँ ने जो विवाह के ऊपर लिखा है वो बस उनके हाथ में दे दिया जाता था। दिस यूज टू बी द मैरिज। और जो माँ ने लिखा है वो अद्भुत है। मतलब मुझे तो लगता है कि अगर आदमी उसका 1% भी फॉलो कर पाए तो कितना सुंदर है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो भविष्य की भगवान ने शुरू की है यहाँ पे। हाँ,
अब एक जमाना था जब हिलेरी ने 1953 में एवरेस्ट किया था, आज जमाना है कि 9 घंटे में आदमी एवरेस्ट जाके वापस आ गया। एक आदमी के व्यक्ति ने भी एवरेस्ट तय कर लिया, तो एक दिन में 228 आदमी एवरेस्ट पे पहुंच गए। तो ये कल को, और हम प्रगति की ओर जा रहे हैं, हमको उसको नहीं रोक सकते कल। ये बात,
धन्यवाद गोयल सर। और किसी को कोई टिप्पणी करनी हो, प्रश्न करना हो तो स्वागत है, नहीं तो। विनोद जी,
चाहता हूँ कि उन अभिभावकों के लिए आपके द्वारा क्या संदेश दिया जाएगा जिनके बच्चे शादी नहीं करते और उनके मन में इस बात का लोभ रहता है और वो सोचते हैं कि हमने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। लेकिन इसके बारे में मेरे जैसे कई अभिभावक मुझसे मिलते हैं, तो मैं
तो बस इतना कहूँगा कि अभिभावकों को ये पता होना चाहिए, उनको ये बताने की आवश्यकता है कि जो बच्चे हैं आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम नहीं है। ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए। और इसको खलील जिब्रान ने इतने सुंदर, वो लेबनीज पोइट रहा है, उसने कितने अच्छे ढंग से कहा है, हर एक बच्चा जैसे, और ये चिड़िया सिखा देती है, नेस्ट है, नेस्ट से निकल के ये उनका अपना जीवन है, उनको तो पूरे आकाश में विचरण करना है। वो हमारी अधूरी इच्छाओं को पूरा करेंगे, ये फॉर्मेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विवाह करें, उनके बच्चे हों, वो ये जॉब करे, वहाँ से पैसे कमाए, ये बहुत। तो मैं तो बस यही बोलता हूँ सबको कि भाई आपकी जो इच्छाएं रह गई अब उनको तो अपना उड़ने दो मुक्त गगन में और एक्सप्लोर करने दो, ये उनकी ज़िंदगी है और दे मस्ट, और उसमें जॉय मिलना चाहिए हमें। मुझे तो कई बार लगता है कि पेरेंट्स कैसे खुश होते हैं कि मेरे बच्चे बस मेरे पास वो पूरे जीवन, मुझे तो बच्चों को तो दे मस्ट फ्लाई वाइड। तो अब ये तो, लेकिन नहीं समझते हैं, वो भी एक सत्य है कि अब वो पुराने फॉर्मेट में वो दुख की नदियाँ लिखी हैं, अब क्या करोगे, बिना कारण के दुख है ये कि भाई बच्चे हमारे हिसाब से नहीं चलते, बच्चे विवाह नहीं कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, मैं कई बार पूछता हूँ, मैं तो बड़े स्पष्टवादिता में विश्वास करके पूछता हूँ कभी कभी कि अच्छा एक बात बताइए, बच्चों को छोड़ दीजिए, आप विवाह में बहुत ही खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो नहीं नहीं डॉक्टर साहब ये नहीं मतलब है, वो नहीं मतलब है। तो आपने बिता ली अपनी अपनी कहानी, लिख ली, अब बच्चों को अपने ढंग से लिखने चाहिए। या तो आप बड़े आइडियल मैरिज का नमूना है कि भाई हम विवाह में हमने एकदम ऐसा परफेक्ट विवाह है जिसमें हमारे कोई किसी प्रकार का वो ही नहीं हुआ। मैंने कहा जब आपकी आपकी मैरिज एक कहते ना रैग टैग बंधी हुई है, तो लेट चिल्ड्रन ट्राई, दे विल एटलीस्ट ट्राई समथिंग बेटर, रियलाइज समथिंग बेटर। कम से कम वो भूल तो वो ना करें जो हमने की है, उनको नई भूले करने दे करने दे, दे विल हिट द जैकपॉट वन डे। पर वो जो भूले हमने की है कम से कम वो तो ना करें। तो मैं तो यही, खासकर लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए तो एक बात है, बट विमेन गेटिंग मैरिड बहुत बड़ा फंदा है अगर आप मुझसे पूछें। लड़कों का तो चलो मैं उनसे कहीं अधिक, दे शुड बी अलाउड फ्रीडम एनीवेज। अब अलाउड का कोई कंसेप्ट नहीं है, युग बदल गया है।
अलाउड करने वाले
एग्जैक्टली
यहाँ रिकमेंड करूंगा एवरीबॉडी, इफ यू कैन रीड द पोएम आवर चिल्ड्रन।
हाँ
खलील जिब्रान,
यहाँ उसी की बात मैं कर रहा था।
बुक इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट नाम की किताब में खलील जिब्रान साहब की एक कविता है, जरूर पढ़िए, उसमें आप बहुत अच्छा लगेगा।
अवर चिल्ड्रेन आर नॉट अवर चिल्ड्रेन, दे आर शॉट, दे आर एरो शॉट बाय द बो ऑफ टाइम। बहुत सुंदर है वो पूरी, एक समय मैंने याद की हुई थी। एनीवेज चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
सुरेश जैन, जैन साहब अनम्यूट करिए,
अनम्यूट करो,
अनम्यूट करिए
सर। बहुत 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 धन्यवाद, अच्छा एलाइटन दिया। ये दो शब्द आते हैं, एक होता है निश्चय और एक होता है व्यवहार का। तो जो व्यवहार के अंदर बात कहते हैं, बड़ा दुख हुआ, ये व्यवहार की बात है। निश्चय में पता है कि जो चला गया वो अगली यात्रा की शुरू हो जाती है, तो व्यवहार तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। बोलचाल की भाषा में या जो आप समाज में रहते हैं, तो व्यवहार भी जरूरी है किसी संदर्भ में। लेकिन निश्चय में हमें पता है कि वो नई आत्मा चली गई, अगला गंतव्य लेगी, वो वापस नहीं आएगी, दुख नहीं मनाना चाहिए, सबको पता है। लेकिन व्यवहार में जो है होता है ऐसा, तो इससे व्यवहार को भी इग्नोर नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है।
नहीं ठीक है,
व्यवहार भी बहुत बड़ा रोल अपनाता है इस संदर्भ में।
नहीं ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल आपकी बात है, पर आने वाला युग ये सब चीजें छोड़ने वाला है, दैट्स ट्रू।
आप पांडे जी
वो ठीक
है, कंप्लीट करिए, आवाज बंद हो गई। आप कुछ कह रहे थे पांडे जी?
नहीं नहीं, मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन वो जो आने वाला युग है ये सब वो पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाला है। वो ठीक है, वो हम सबका एक फॉर्मेट है जिसमें हम जीते हैं। बात ये नहीं कि वो सही या गलत है, वो एक व्यवहारिक सत्य और एक आंतरिक सत्य, इन दोनों के जो विरोधाभास है वही तो जीवन की एक रूपरेखा आज की प्रस्तुत करता है। लेकिन ये बदलने वाला है, तो उसको भी अगर हम स्वीकार करें कि भाई इस सृष्टि में हमारी सोच अपनी जगह है लेकिन भगवान का तरीका अपनी जगह है, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है।
धन्यवाद,
जय माँ।
हाँ पांडे जी का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार। हम जब भी आपसे निवेदन करते हैं तो आप आते हैं इस मंच पर, तो आपका आभार बहुत बहुत। अगले शुक्रवार को हम लोग सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी आभार। अगले शुक्रवार को हम लोग फिर मिलेंगे नई वार्ता के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद,
प्रणाम।